हरे कृष्णा। आज एकादशी है। एकादशी के दिवस पर हम अलग अलग महान वैष्णव संतों की चर्चा करते हैं। कई एकादशियों से दक्षिण भारत के श्री वैष्णव संप्रदाय के महान भक्त आलवारों की चर्चा चल रही है। अब तक हम चार आलवारों के वर्णन कर चुके हैं। पहले तीन, जो कि पोइग्याय आलवार, भूतम आलवार और पेय आलवार, ये पहले तीन थे। द्वापर युग के अंत में उनका जन्म हुआ। इन सारे आलवरों के बारे में भविष्यवाणी हुई है श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में। तत्पश्चात हमने तिरुमलिसाई आलवार की चर्चा की। पिछली बार चर्चा ये चल रही थी कि तिरुमलिसाई आलवार पहले अष्टांग योगी थे, परंतु फिर बाद में वैष्णव बन गए और वैष्णव बनने के बाद इतने दृढ़ हो गए अपने वैष्णवता में कि उनका नाम रखा गया भक्ति सार, भक्ति का सार। पिछले एकादशी को हम देख रहे थे कि वो इतने शुद्ध भक्त थे भगवान के कि स्वयं भगवान उनके पीछे पीछे उनके आज्ञा का पालन करते हुए आए। आपको वो कथा याद होगी कि एक बुढ़िया उनके पास आया करती थी, उनकी सेवा करती थी और उन पर प्रसन्न होकर जब उन्हें वरदान देना चाहा उस बुढ़िया को, तो बुढ़िया ने यौवन और सौंदर्य मांगा, जो कि तिरुमले से आलवार ने दे दिया। और अचानक वो बुढ़िया एकदम सुंदर युवती हो गई। उस देश के राजा पल्लव राज इस युवती के प्रति आकर्षित हुए, उसको अपनी महारानी बना दिया। और जैसे राजा बूढ़े होते गए, उनकी रानी वैसे की वैसी जवान ही रह गई। और राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या समस्या, ये क्या बात है, इसका राज क्या है। तब उस रानी ने बताया कि ये सब केवल तिरुमले से आलवार की कृपा है, भक्ति सार। लेकिन यहाँ उनके शिष्य कन्नी कन्नन रोज आते हैं भिक्षा के लिए, उनके माध्यम से आपकी इच्छा भी पूर्ण हो सकती है, आप भी युवक पुनः हो सकते हैं। जब उन्होंने कन्नी कन्नन से बात की राजा ने कि आपके गुरु महाराज को यहाँ पर बुलाइए, तो कन्नी कन्नन ने कहा कि ऐसे नहीं करते, वो इधर उधर कहीं किसी राजा के यहाँ नहीं जाते हैं। तो राजा को गुस्सा आया, ये बार बार कहने पर भी कन्नी कन्नन नहीं माने, तो राजा ने कन्नी कन्नन को राज्य से बाहर निकाल दिया। कन्नी कन्नन सीधे अपने गुरु तिरुमली से आलवार के पास गए और उनको जो हुआ वो सब बता दिया। भक्ति सार ने कहा, फिर अगर तुम जाओगे तो मैं यहाँ क्यों रहूं। और भक्ति सार सीधे गए भगवान के पास। भगवान अपने मूर्ति के ऊपर, अपने मूर्ति रूप में शयन कर रहे थे अनंत शेष के ऊपर। उन्होंने कहा कि कवि कन्नी कन्नन जा रहा है और मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ, तो आप कैसे यहाँ लेटे हुए रहेंगे, आपका जो शयन है, आपका बिस्तर है, वो अनंत शेष है, चलिए उठाइए आपके बोरी बिस्तर, चलिए हमारे पीछे। और भगवान ने एक शब्द नहीं कहा, कोई विरोध नहीं किया, तुरंत उठे और पीछे पीछे चलते गए। और जैसे ही भगवान निकल गए तो कुंभकोण में जितने भी सारे देवी देवताओं की मूर्तियां थीं वो भी पीछे पीछे चले गए, क्योंकि देवी देवता भी आखिर भगवान के भक्त हैं, भगवान के दास हैं, जहां भगवान है वहां पर उनके भक्त रहते हैं। तो जब भगवान चले गए तो सारे देवी देवताएं भी निकल गए वहां से, और कुंभकोण में कोई मंदिर में कोई विग्रह नहीं रहा, सारे मंदिर खाली हो गए। और फिर सारे अशुभ घटनाएं राज्य में होने लगी, अकाल पड़ गया, बहुत कठिनाइयां आई। तब राजा के होश ठिकाने आ गए, वो पीछे दौड़ के भक्तिसार के चरण कमलों में और कन्नीकंदन के चरण कमलों में क्षमा याचना करने लगे। क्षमा याचना करने के बाद मधुर भक्तिसार ने उनको क्षमा कर दिया। फिर से भगवान के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, अब कन्नीकंदन वापस जा रहा है, उसके पीछे मैं भी जा रहा हूँ, अब आप यहाँ क्या करेंगे? फिर से उठाइए बोरी बिस्तर, चलिए हमारे पीछे। फिर से भगवान ऐसे चले आए, इसलिए उनका नाम हुआ, क्या नाम था कुछ किसी को याद है? यथोक्तकारी, यथा उक्तकारी। वो भगवान जिन्होंने जैसे उनके भक्त ने बताया वैसे किया, यथा जैसे उक्त मतलब कहा गया, कार्य कर दिया, भक्त ने कहा ऐसे करो कर दिया, तो यथोक्त कार्य। तो ये है भगवान का स्वरूप, अपने भक्त के दास हो जाते हैं। जैसे भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान भी उतनी ही तीव्रता से बल्कि ज्यादा वो अपने सेवक की सेवा करना चाहते हैं। आगे भक्तिसार ने कई ब्राह्मणों को कई सबक सिखाए, जो कि उनका मजाक उड़ा रहे थे या जो कि उनको स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका जन्म एक ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था। और एक जगह उस स्थान के विग्रह ने अपने आप को घुमा लिया केवल भक्तिसार की ओर देखने के लिए, जैसे कि उडुपी में कनकदास के साथ हुआ था, आप सबको वो कथा तो मालूम है। और जब वो फिर से कुंभकोणम के पास आए तो वहां भगवान जिनका नाम है अरावामुदन, वो लेटे हुए थे। तो भक्तिसार ने उनसे कहा कि हे प्रभु, आप इतनी आराम से लेटे हुए हैं तो जरा उठिए। तो भगवान उठने लगे मंदिर में, भगवान का विग्रह है। तो जब भक्तिसार ने देखा तो कहा अरे रे ठीक है लेट जाइए। फिर से लेटने गए और इसी आधे में न लेटे हुए ठीक से न ठीक से उठे हुए, और आज भी भगवान का विग्रह ठीक वैसे ही है। तो ये थे तिरुमली साई आलवार या भक्तिसार। तो हम देखते हैं कि ये सारे आलवारों की कथाओं में इतना रस है, क्योंकि इन आलवारों का संबंध भगवान के साथ इतना निकट का था, इतना प्रेम का था। वास्तव में केवल प्रेम और भक्ति में ही रस है। अगर किसी के पास बहुत कुछ पैसा हो, धन हो, वो बहुत बड़ा आदमी हो, शक्ति हो, पद हो, सब कुछ हो, परंतु उसके जीवन में अगर कोई प्रेम के संबंध नहीं है, जीवन में उसका कोई प्रेम नहीं है, तो उसका सारा जीवन जो है वो खोखला लगता है उसको, उसमें कोई आनंद नहीं, कोई मजा नहीं। कल हम विद्यार्थियों के साथ थे, उनके बीच में थे, और वहां एक प्रवचन हुआ, तो हम उनसे पूछ रहे थे कि देखो आप सब पैसा कमाने चाहते हो ना, सब अमीर होना चाहते हो ना? सभी ने हाथ ऊपर किया, हाँ हम सब खूब पैसा बनाना चाहते हैं। तो ठीक है, कल्पना कीजिए कि आपके पास करोड़ों करोड़ों रुपए आ गए, बल्कि आपसे जैसा कोई अमीर आदमी ना हो, दुनिया में से सबसे अमीर आदमी आप बन गए। परंतु इसके लिए शर्त एक है, और वो ये है कि आपको अकेले रहना पड़ेगा, आपके कोई मित्र नहीं, कोई साथी नहीं, कोई नहीं। विशाल महल में रहिए कोई बात नहीं, लेकिन कोई साथी नहीं, अकेले रहना पड़ेगा। अपने करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए का भोग अकेले करना पड़ेगा। या तो फिर आप अब जैसे हैं वैसे ही रहो, संघर्ष करते हुए अपने पढ़ाई के साथ, अपने नौकरी के साथ, अपने व्यवसाय के साथ, लेकिन अपने जीवन में प्रेम के संबंध हैं, कोई अच्छे मित्र हैं जिनसे हम अच्छी बातें कर सकें, तो इन दोनों मार्गों में आपको कौन सा चाहिए? पहला मार्ग किसको चाहिए? एक ने भी हाथ ऊपर नहीं किया। दूसरा मार किसको चाहिए, सभी ने हाथ ऊपर किया। अरे आप बोल रहे थे आपको बहुत पैसा चाहिए, तो इसका मतलब है कि पैसे से ज्यादा आपको प्रेम चाहिए जीवन में। जब जीवन में प्रेम नहीं होगा तो आपका पैसा कोई मायने नहीं रखता। तो जो ये भक्ति मार्ग है, ये कोई एक कृत्रिम ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कि जबरदस्ती जीव के ऊपर या व्यक्ति के ऊपर डाला जा रहा है कि चलो भक्ति करो। नहीं, भक्ति तो आत्मा का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। बल्कि भक्ति भगवान का अस्तित्व का सार है, प्रेम। लेकिन भगवान प्रेम करेंगे किससे और प्रेम स्वीकार करेंगे किसका? इसलिए उन्होंने अपने आप को अनेक जीवों में प्रकट किया है, एको बहुश्याम, विस्तार किया अपने आप को भगवान ने। और फिर जीवों के साथ वो प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, जिससे कि उस रस की बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। इसमें भगवान को भी बड़ा आनंद आता है और भक्तों को भी। तो ये है भक्ति। तो हमारी जो प्रेम करने की प्रवृत्ति है और प्रेम स्वीकार करने की जो इच्छा है, वो यह संसार में हमेशा अतृप्त रहती है। हमेशा हम निराश हो जाते हैं हमारे प्रेम के संबंधों में। यहां अंततः मृत्यु आकर हमारे प्रेम के संबंधों को नष्ट कर देता है। परंतु जो आत्मा का संबंध भगवान के साथ है, जो नित्य संबंध है, वो हमें पूरी तरह से संतुष्ट कर सकता है। इसलिए इसमें जो अच्छा, जो वास्तव में जो आनंद आता है, वो और किसी संबंध में नहीं आएगा। तो यहां इन आलवरों की कथाओं में हम देखते हैं कि जो सच्चे भक्त होते हैं, वो अपने जीवन में ऐसे ही रस का आस्वादन करते हैं और प्रेम के वश होकर भगवान ऐसे सब चीजें करते हैं जो कि हमारे लिए शायद संभव न हो। और शायद हम सोचें कि ये सब काल्पनिक चीजें हैं, सब कहानियां हैं, सत्य नहीं है। लेकिन ये सत्य है, ये कोई सपने नहीं है, कोई दंत कथा नहीं है। हमारे अंदर जितना जितनी श्रद्धा है, जितना प्रेम है, वैसे ही भगवान का विग्रह है हमारे साथ बर्ताव करेगा। अगर हम सोचेंगे कि ये विग्रह केवल पत्थर है, केवल एक प्रतिमा है, तो फिर भगवान उसी तरह से हमारे साथ बर्ताव करेंगे, केवल एक पत्थर ही रहेंगे हमारे लिए। लेकिन अगर हम समझ जाएंगे कि ये पत्थर नहीं है, ये साक्षात भगवान है, और जिस तरह से एक जीते जागते व्यक्ति के साथ हम बात कर सकते हैं, उनसे प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं, उसी तरह से बल्कि उससे ज्यादा, उससे और शुद्धता से हम भगवान के शिव विग्रह के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे महान भक्तों के, भगवान के विग्रहों के साथ जो ऐसी लीलाएं हुई हैं, इनसे हमें श्रद्धा प्राप्त हो सकती है, इनसे हमें प्रेरणा मिल सकती है। तो तिरुमल से आलवार, भक्ति सार और अन्य जो इसके पहले जिन आलवारों की चर्चा हुई थी और बाद में आने वाले आलवारों की चर्चा होगी, इनको हमें श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। संशय नहीं करना चाहिए कि ये भला कैसे हो सकता है कि विग्रह लेट रहे थे, उठने लगे, या विग्रह उठ के पीछे पीछे चलने लगे। ये सब सत्य है। तो आइए अब चर्चा करते हैं पांचवे आलवार का, जिनका नाम है नम्मालवार। नम मतलब हमारा, तमिल भाषा में हमारे आलवार मतलब बहुत निकट के। ये नाम इनको स्वयं भगवान रंगनाथ ने दिया था, जो कि श्री रंगम के आदि अधिष्ठाता देव हैं। रंगनाथ जी श्रीरंगम में निवास करते हैं और इतने प्रिय थे उनके लिए ये भक्त कि स्वयं रंगनाथ जी ने उनको ये नाम रखा कि ये हमारे आलवार है, किसी दूसरों के पराए नहीं, अपने हैं वो। तो ये था प्रेम भगवान का नम्मालवार के ऊपर। इनके और कई नाम हैं। एक है शतकोप, वैसे शतवायु है, जो कि ऐसे बताया जाता है कि वो जब बच्चा पेट में होता है माँ के, तो उस समय उसकी दृष्टि खराब करने के लिए, उसकी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए, मतलब माया शक्ति वो काम करती है। माँ के गर्भ में होते हुए बच्चा तो सोचता है कि जब मैं बाहर आऊंगा तो भगवान की खूब भक्ति करूंगा, लेकिन जब बाहर आता है तो सब भूल जाता है और फिर माया के जाल में फंस जाता है। तो ये शतवायु उसकी दृष्टि को खराब कर देता है, ढक देता है। तो जो व्यक्ति इस वायु को पार कर चुका है, जिसके ऊपर इस वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो है शतकोप। ये नम मालवार जो है ये बिल्कुल तीन गुणों के परे थे, माया उनको छू भी नहीं सकती थी, इसलिए उनका नाम हुआ शतकोप। और एक उनका नाम हुआ मारन, मतलब जिसका इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, जो संसार के रास्ते से बिल्कुल दूसरे रास्ते में जा रहे हैं। संसार जगत जो है इस रास्ते में जा रहा है तो ये उल्टे रास्ते में जा रहे हैं। और वास्तव में सत्य है, भक्तों का रास्ता जो है वो दुनिया के रास्ते से मिलता जुलता नहीं है, टक्कर का रास्ता है। बल्कि दुनिया तो भोग की ओर जा रही है और भक्त लोग कोशिश करते हैं कि भोग से दूर रहकर भगवान के चरणों में भक्ति कैसे की जाए। तो ये उनका नाम था मारन, बल्कि जन्म के समय उनके माता पिता ने उनका नाम मारन ही रखा था। तो और एक नाम उनका है परांकुश, मतलब जो झूठे धर्मों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे और कई नाम उनके हैं, दक्षिण भारत में ये काफी प्रसिद्ध हैं, विशेष करके जो तमिलनाडु के हैं उन्होंने इनका नाम तो अवश्य सुना होगा। वैसे नम आलवार ये सारे आलवारों में से सबसे प्रमुख माने जाते हैं। सारे आलवारों के बल के सारे श्री वैष्णव संप्रदाय के कुलपति माने जाते हैं और सारे आलवार अन्य आलवार उनके अंग माने जाते हैं। उनका जन्म कली के शुरुआत में हुआ। भगवान श्री कृष्ण स्वधाम लौट के गए द्वापर के अंत में, और श्री कृष्ण के स्वधाम लौटने का समय कलयुग की शुरुआत का समय है, और इसके करीब करीब 40 साल पश्चात नम मालवार या मारन का जन्म हुआ। उनके बारे में भविष्यवाणी भविष्य पुराण में हुई है, जिसमें बताया गया है कि वो विष्णुदूत विश्वक्षेन के अवतार हैं और उनका जन्म होना है ताम्रपर्णी के तट पर विष्णु भक्ति का प्रचार करने के लिए। ब्रह्मांड पुराण में बताया हुआ है कि उनका जन्म का स्थान क्या है, पांड्य देश में ताम्रपर्णी नदी के तट पर एक गांव है, एक शहर है, जिसका नाम है श्रीनगरी या तिरुनगरी। तमिल भाषा में तिरु मतलब श्री या लक्ष्मी या ऐश्वर्य सौंदर्य, और इस जगह का और एक नाम है कुरुकुर। ताम्रपर्णी नदी ये भी एक पवित्र नदी मानी जाती है, पुराणों में इसका वर्णन है। आपको याद होगा कि आलवारों के बारे में चर्चा करने के पहले इस श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के इस श्लोक के दो श्लोकों का वर्णन हम कर रहे थे, जिसमें कि इन आलवारों के बारे में भविष्यवाणी की हुई है और इन सारे नदियों का वर्णन है। यहां पर आप देखेंगे कि सारे आलवार इन नदियों के तट पर प्रकट हुए थे, जैसे कि पयस्विनी, ताम्रपर्णी, कृतमाला, कावेरी इत्यादि। तो सारे नदियां बहुत पवित्र मानी जाती हैं। ताम्रपर्णी नदी, यहां भी पास में कोई ताम्रपर्णी नदी है कोई बता रहे थे, लेकिन असली ताम्रपर्णी तो वही है दक्षिण में। तो ताम्रपर्णी नदी में बहुत सारे मोतियां वगैरह मिलते हैं और वहां का जल जो है जमीन की उर्वरा शक्ति को बहुत बढ़ाता है, इसलिए वहां सब हरे भरे खेत वगैरह दिखाई पड़ते थे। तो इस स्थान का श्रीनगरी या तिरुनगरी का इतिहास इस प्रकार से है कि बहुत साल पहले ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि करता है, वो भगवान विष्णु की सेवा उनकी आराधना करना चाहते थे, तपस्या करना चाहते थे भगवान की संतुष्टि के लिए। तो भगवान विष्णु के पास गए और उनका पूछा कि आपकी उपासना करने के लिए योग्य स्थान कौन सा होगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ताम्रपर्णी नदी के तट पर आदिनाथ का मंदिर है, आदिनाथ मतलब आदिशेष, आदिनाथ का मंदिर वहां पर है, और वहां पर जाकर आप तपस्या करो, मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो वहां पर, मैं ही वहां पर आदिनाथ के रूप में उपस्थित हूं। तो विष्णु के आदेश पर ब्रह्मा जी पहुंच गए ताम्रपर्णी के तट पर। वहां पर श्री आदिनाथ की सेवा की, कई सालों तक वहां रहे, उपासना किए, तपस्या की उन्होंने, और फिर आदिनाथ के आशीर्वाद को स्वीकार करके पुनः ब्रह्मलोक चले गए। तो तमिल भाषा में गुरु को कुरु कहते हैं, इसलिए इस स्थान का नाम उसके बाद में हुआ कुरुकपुरी या कुरुकुर, और आगे चल के इसका नाम बदल गया। जैसे ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया ये गांव, तो इसका नाम हो गया तिरुनगरी या श्रीनगरी। और क्योंकि नम आलवार, जो कि सबसे महत्वपूर्ण आलवार है, उनका जन्म वहां पे हुआ, तो आज तमिलनाडु में ये जगह आलवार तिरुनगरी के नाम से जाना जाता है। अगर आप तमिलनाडु जाएं तो इस जगह का नाम पूछे, कोई भी आपको बताएगा आलवार तिरुनगरी कहां पर है, प्रसिद्ध जगह है। तो इस स्थान में इनका जन्म हुआ। इनका इतिहास ऐसे है कि जिस कुल में उन्होंने जन्म लिया वो वैष्णवों का कुल था। राजा थे और उनके राज्य का नाम था कुरुगुनाडु। क्षमा कीजिए, तमिल नाम है तो हमको इतने अच्छी तरह से याद नहीं होते, देखना पड़ता, उच्चारण भी शायद ठीक से ना हो, कोई तमिल भाषा बोलने वाले हो तो हमें ठीक कर सकते हैं। कुरुगुनाडु, जो कुरुकुर, जिसकी राजधानी थी कुरुकुर या तिरुनगरी, 7 पीढ़ियों से ये बहुत अच्छे महान वैष्णव थे। और नम्मालवार के दादा, उनका नाम था पोरकरियार। पोरकरियार के पुत्र का नाम था करियार, और करियार के पुत्र हुए नम्मालवार। तो नम्मालवार के जन्म के कई साल पहले उनके दादा पोरकरियार ने सोचा कि अब मेरे बेटे का बेटे की उम्र हो गई है शादी के लिए, तो कोई योग्य मुझे वधु ढूंढना चाहिए। तो उन्होंने सुना था कि एक बहुत महान वैष्णव रहते हैं एक शहर में, जो कि यहां से काफी दूर है, जिस शहर का नाम है तिरुवन परिसारम। तो अपने पुत्र को लेकर, अपने परिवार को लेकर वहां पर चल पड़े। वो स्थान भी एक बहुत पवित्र स्थान था, क्योंकि वहां पे भगवान विष्णु के का एक बहुत सुंदर मंदिर था, और वहां विष्णु के का नाम था तिलवर मरबार, तिरुवल मारबर। इसका मतलब है कि जिन पे वक्षस्थल पे श्री या लक्ष्मी निवास करती हैं। श्रीनिवास का मतलब यही है, श्री निवास, जिनके वक्षस्थल पर श्री देवी लक्ष्मी देवी निवास करती हैं, वो है श्रीनिवास। तिरुपति में भगवान का नाम है वेंकटेश्वर, बालाजी या श्रीनिवास भी उनको कहते हैं, श्रीनिवास गोविंद। तो क्योंकि यही श्रीनिवास है वो, इसलिए यहां तिरुवल मरबार, ये क्या नाम, तिरुवन परिसारम इस जगह में निवास करते हैं, इसलिए इस जगह का नाम बाद में हो गया तिरुपति सारम। क्योंकि तिरुपति में निवास करने वाले श्रीनिवास और यहां इस स्थान में निवास करने वाले भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं था। तो खैर, इस शहर में पहुंचकर पोरकरियार वहां पर आए, और जिस व्यक्ति से वो मिलना चाहते थे उनका भी नाम वही था जो कि मंदिर में भगवान का था, तिरुवल मारबर। और उनकी कन्या थी, पुत्री थी, जिनका नाम था उड़ैया नंगैया। ये सब अच्छे अच्छे वैष्णव थे वहां पर। तो इन्होंने जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा, और तिरुवल मारबर बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि कोई समय भी खोना नहीं चाहिए, तुरंत विवाह कर दें। तुरंत विवाह की तैयारियां हुई, अच्छे अच्छे मंडप बन गए, संगीत के वाद्य बजने लगे सब जगह, और बड़े धूमधाम से विवाह मनाया गया। विवाह के बाद फिर करियार, जो कि वर थे, अपने वधू को लेकर, नंगैयार को लेकर वापस चल पड़े। और जब वो अपने गांव में वापस लौट के आ गए कुरुकुर में, तो उनका इस तरह से स्वागत हुआ जैसे कि अयोध्या में हुआ था जबकि श्री रामचंद्र मिथिला से लौट कर आए थे सीता देवी से विवाह करके। जगह जगह पर ध्वज पताकाएं थीं, सारे सड़कों के ऊपर सुगंधित जल छिड़काया हुआ था, सारे घर वगैरह फूलों से सुशोभित थे, जगह जगह पर रंग बिरंगी कपड़े वगैरह ऐसे लगाए हुए थे और लोग बड़े आनंद के भाव में थे। और वहाँ पर कुरुकुर में रहकर इन दोनों ने, पति पत्नी ने, बड़े आदर्श गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया जैसे कि धर्मशास्त्र में बताया गया है। और फिर समय ऐसे आया कि फिर से उनको अपने पत्नी के घर में, पत्नी के जो पिता थे जिनका नाम था तिरुवल मारबार, उनके घर जाना था, निमंत्रण आया था, तो वहाँ पे फिर से चले गए करियार अपने पत्नी को लेकर। और वहाँ पर थोड़े दिन रहकर वापस लौटते समय वो एक तीर्थ स्थान में रुके जिस स्थान का नाम है तिरुक कुरुंगुड़ी, जो कि महेंद्र पर्वत के पास में है। बहुत ही सुंदर स्थान माना जाता है और वहाँ पे हरियाली बहुत थी, मधुमक्खियाँ, पक्षियाँ, बहुत सुंदर, बहुत पावन जगह। और वहाँ पर जो मंदिर था भगवान विष्णु का, और विष्णु का नाम वहाँ था श्री नंबी। अब कई साल बीत चुके थे, करियार और नंगैयार के का कोई संतान नहीं हुआ था, तो श्री नंबी के पास आकर करियार ने प्रार्थना की एक संतान के लिए, और श्री नंबी ने स्वीकृति की, कहा ठीक है। अपने पुरोहित या अपने पुजारी के माध्यम से उन्होंने करियार को उनके स्वयं जो पहने हुए तुलसी की माला दे दी, तुलसी का हार जो था, साथ साथ तीर्थ और प्रसाद भी दिया। इससे करियार और नंगैयार बड़े प्रसन्न हुए और भगवान को प्रणाम करके फिर से वापस अपने गांव कुरुकुर में लौट के चले गए। उधर थोड़े दिन बीत गए और नंगैयार का गर्भ भर आया और थोड़े समय बाद एक सुंदर बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था। साधारण बच्चे जब जन्म लेते हैं तो कैसे बाहर आते हैं? रोते रोते आते हैं। लेकिन यह बच्चा कभी रोया नहीं, हंसते हुए आया, हंसमुख चेहरे से आया, लेकिन आंखें बंद थी, मुंह भी बंद था, लेकिन एक हल्की मुस्कान थी उसके चेहरे के ऊपर। और उसका जन्म ऐसे हुआ कि मानो सूर्योदय हो गया है। सूर्य जो कि वकुल फूलों से, सुंदर वकुल फूलों से सुशोभित है, ऐसे सूर्य का उदय हुआ है। एक ऐसा सूर्य जो कि आध्यात्मिक प्रकाश को फैलाने वाला है और आध्यात्मिक जो अंधकार है, अज्ञान का अंधकार, उसको नष्ट करने वाला है। श्री वैष्णव कवि ऐसे बताते हैं कि उस समय जो मनुष्यों का हृदय था वो कैसे कमल के समान था जो कि बंद बंद था। आपको मालूम है कि ज्यादा से कमल पुष्प होते हैं रात के समय बंद हो जाते हैं और सूर्योदय के साथ सूरज के प्रकाश से के आते आते ही वो खिलने लगते हैं। तो अब अज्ञान के अंधकार में मनुष्यों का कमल रूपी हृदय जो है वो बंद हो चुका था, अर्थात कोई भक्ति नहीं थी। लेकिन इस बच्चे के जन्म होने के समय ऐसे लग रहा था कि मानो ये ऐसे सूरज का उदय हो गया है जिसकी वजह से मनुष्यों के ऐसे कठोर हृदय, कमल रूपी हृदय अब खिलने लगे हैं। और एक ऐसा सागर है जिसकी इतनी उष्णता है कि इस भवसागर को सुखा देने वाला सूरज है। इस भवसागर में बहुत जल है, इतना जल है कि सारे प्राणी यहाँ के इसमें डूब रहे हैं, लेकिन इस सूरज की वजह से ये भवसागर भी सूखने लगा, अर्थात सबको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाने का एक मार्ग मिल गया। तो उसी समय भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार उनके उनकी जो शैया हैं आदिशेष अनंत शेष वो भी प्रकट हो गए आदिनाथ मंदिर के पास, और उन्होंने अपना जन्म लिया और वो प्रकट हुए एक इमली के वृक्ष के रूप में, और आज भी ये इमली का वृक्ष वहां पर है। इतने सालों के बाद भी 5000 से अधिक साल बीत गए, क्योंकि ये कलयुग की शुरुआत की बात है, लेकिन अभी तक ये वृक्ष जीवित है और अभी भी इसकी नए नए शाखाएं आ रही हैं। ऐसे बताया जाता है कि इसके 7 प्रमुख शाखाएं हैं, और ये मंदिर का जो विमान है उसके ऊपर तक ये छा गया है, पहुंच गया है। अनंत शेष ने यहाँ आकर तीर्णगिरी में अपना निवास स्थान बनाया है, केवल इसलिए कि वो जानते थे कि मेरे भक्त जो है वो आने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं, और उनको आश्रय देने के लिए मुझे यहाँ प्रकट होना पड़ेगा। आगे चल के नम्मलवार जो हैं अपने सारे आयुष्य भर केवल उस वृक्ष के नीचे रहने वाले थे। देखिए बड़ी अद्भुत बात है कि नम्मलवार के जन्म होने के बाद ही 11 दिन बाद उनको इस इमली वृक्ष के नीचे ले जाया गया, और उस दिन के बाद नम्मलवार कभी भी उस वृक्ष से बाहर या नहीं चले गए, सारा जीवन भर वहीं पर रहे। तो आदिशेष इस बात को जानते थे, इसलिए वो वहां पर प्रकट हो गए। तो जब ये बच्चा प्रकट हो गया और रोता नहीं था, कुछ खाता नहीं था, अपने माँ का दूध भी नहीं पीता था, लेकिन इतना होते हुए भी कोई शरीर में कोई कमजोरी दिखाई नहीं पड़ रही थी, बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त दिख रहा था। एक दिन बीत गया, 2 दिन, 3 दिन, बच्चे के आंख बंद ही रहे, बच्चे ने मुंह भी बंद करके रखा था, एक शब्द भी नहीं बोलता था, रोता नहीं था, कुछ नहीं, केवल वही हल्की सी मुस्कान चेहरे के ऊपर, और चेहरे के ऊपर ऐसी एक शांति जो कि केवल महान भक्तों को हो सकती है, जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष के चेहरे पर दिखाई पड़ सकती है। और जब उनके माता पिता ने इस बच्चे को देखा और ये देखा कि इसको कुछ खिलाया पिलाया नहीं जा सकता, ये बच्चा कुछ देख नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो क्या किया जा सकता है, बड़े चिंतित हो गए। जैसे कि स्वाभाविक है, किसी माता पिता को होना चाहिए, जब बच्चा कुछ खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, बोलेगा नहीं, देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, तो माता पिता तो चिंतित होने ही वाले हैं। परंतु फिर वो समझ गए, क्योंकि वो महान वैष्णव थे, कि ये शायद भगवान की इच्छा है, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, भगवान की भेंट है, भगवान के उपहार है, भगवान का कोई विशेष कार्य संपन्न करने के लिए ये बच्चा यहाँ पर आया है, और हमारा सौभाग्य है कि भगवान ने ऐसे बड़े होने वाले संत को हमारे बच्चे के रूप में भेज दिया है। लेकिन फिर भी माता पिता होने के नाते थोड़ा दुख तो हो ही रहा था। फिर 10 दिन ऐसे बीत गए, 11वां दिन आया, उन्होंने स्नान किया, और जैसे कि वर्णन होता है धर्मशास्त्रों में, बच्चे को अब वो भगवान का दर्शन कराने के लिए ले गए, बल्कि भगवान को दिखाने के लिए कि देखो ये आपकी भेंट है। जब वो मंदिर में लेके गए बच्चे को, आदिनाथ के मंदिर में, आदिनाथ के चरण में रख दिया उस बच्चे को, बच्चे ने दर्शन तो किया, लेकिन तुरंत वहां से अपने घुटनों पे, हाथों पे चलते चलते बाहर आ गया और सीधे उस इमली के वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। हालांकि केवल 11 दिन का था उस समय। तो माता पिता ने देखा, उन्होंने एक छोटी सी, एक छोटा सा पलंग उनके लिए लाया था, एक झूला जैसा था, वो सोने का बना हुआ था, क्योंकि वो तो बहुत अमीर थे, राज परिवार के थे, और ये सोने का जो झूला है रत्नों से सुशोभित था। फिर उसको इस वृक्ष के एक डाली से लटका दिया और बच्चे को वहां रखना चाहा, लेकिन आखिर बच्चे को कोई सोना या उसको कोई रत्न नहीं चाहिए थे, वो केवल नीचे ही उस इमली के वृक्ष के तल पर बैठ गया और वहीं बैठा रहा। माता पिता सोचने लगे कि क्या करें, शरीर में दुख तो बहुत हुआ, लेकिन परंतु वो इतने अच्छे वैष्णव थे कि समझ गए कि ये भगवान की इच्छा है, इसलिए उस दिन से उन्होंने ये ठान लिया कि ये हमारा बच्चा नहीं है, ये भगवान का बच्चा है। तो शायद भगवान के हवाले ही वो करने के लिए वहां पर आए थे उस बच्चे को। आजकल माता पिता अपने बच्चों को भगवान के हवाले करने के लिए बहुत विरोध करते हैं, भले अपने 3-4 बच्चे भी हों। प्रभुपाद भी कहा करते थे कि भारतवर्ष में मैंने कितने साल प्रचार करने का प्रयास किया, मैं ऐसे लोगों के पास जाता था जो कि सुसंस्कृत परिवार के थे, जिनके 3-4 लड़के थे, और उनसे कहता था कि देखो अब सारे समाज में इतना उत्पात है, इतनी अशांति है, भगवत भक्ति के अभाव की वजह से लोग बहुत दुखी हैं, और यहाँ कमी है ऐसे लोगों की जो कि इस भक्ति मार्ग का प्रचार कर सकें, अच्छी तरह से आचरण करके प्रचार करें। मैं अकेला हूँ, मुझे कोई ऐसे शिष्य चाहिए जिनका प्रशिक्षण करके उनको मैं अच्छा वैष्णव बनाऊं, ताकि वो जगह जगह जाकर प्रचार करें, लोगों को भक्त बनाएं। आपके पास 3 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, तो एक लड़का मुझे दे दीजिए, मुझे उसे वैष्णव बनाने दीजिए। लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वात्सल्य स्नेह बड़ा तीव्र होता है भक्तों के लिए भी। एक सन्यासी जो कि इस्कॉन के नहीं है लेकिन वैष्णव सन्यासी है, उनसे मिले थे तो वो अपने जीवन की कहानी बता रहे थे। वो वेनेजुएला नाम के देश के हैं जो दक्षिण अमेरिका में है, और वो उनके माता पिता के 26 बच्चे हैं, 26, और सारे 26 बच्चों से बहुत आसक्त थे वो, और ये 26 नंबर के थे। और इन्होंने जब सन्यास लेना चाहा तो माता पिता बहुत रोए, तो उन्होंने कहा अरे 25 और हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वो कहे नहीं, 25 हो 100 हो जो भी हो, इनको बहुत दुख हुआ। हालांकि ये अच्छे मार्ग के लिए गए थे, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाए। तो खैर, लेकिन नंगैयार और करियार ये इतने अच्छे वैष्णव थे, हालांकि दुख हुआ, लेकिन अपने आप उन्होंने बच्चे को भगवान के चरणों में रख दिया, ताकि प्रभु अभी आपके हवाले कर रहे हैं, ये बच्चा तो कोई हमारे बस की बात नहीं है, ये साधारण बच्चा नहीं लगता है, अब आप ही देख लीजिए, और इसके माध्यम से आपको जो इस जगत में काम कराना है आप ही करा दीजिए, हमारी बुद्धि नहीं चल रही है, अब हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, ये शायद यही हमारे गुरु होगा, हम इसके माता पिता क्या हो सकते हैं। तो इस तरह से बच्चा वहीं पर रहा। दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, पूरे 16 साल बीत गए, बच्चा शरीर से बड़ा होता गया, परंतु आंखें खुली नहीं, मुंह खुला नहीं, वही हल्की सी मुस्कान, वही शांति चेहरे के ऊपर, और कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं, तो शौच की बात ही नहीं, वहीं पर बैठे रहे आराम से ध्यान में, केवल मग्न, मानो कि वो विचार कर रहे हैं कि मेरी आंखें केवल भगवान को देखने के लिए है, मेरी जिह्वा केवल भगवान के बारे में बोलने के लिए है। वास्तव में वो ऐसे ही सोच रहा था बच्चा, जबकि वो 11 दिन का भी था, लेकिन माता पिता इस बात को भला कैसे जानते हैं। तो खैर, ऐसे 16 साल पूरे बीत गए, ऐसे अवस्था में मग्न, अपने चित्त को मग्न किया था उन्होंने भगवान के ऊपर, तो सारे जगह जगह से लोग आते थे उनको देखने के लिए कि कोई महान संत है, बड़ा अद्भुत बच्चा है, ये कोई साधारण नहीं है, लेकिन इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। मारन वैसे के वैसे ही बैठे रहे उस इमली के वृक्ष के नीचे। अब हमारी कहानी थोड़ी दूसरी जगह ले जाते हैं, एक और आलवार के पास हम चले जाते हैं, अभी 6 नंबर के जो आलवार है, मधुर कवि आलवार। इन दोनों की कहानियां मिलती जुलती, क्योंकि इन दोनों का गहरा संबंध है। नम्मालवार थे गुरु और मधुर कवि आलवार थे उनके शिष्य। हालांकि मधुर कवि आलवार उम्र में बड़े थे, और वो भी बड़े अच्छे सुशिक्षित, सुसंस्कृत, अच्छे परिवार के थे, लेकिन वो भी आगे चल के नम्मालवार के भक्त बने। कैसे बने ये थोड़ी चर्चा करेंगे, और पुनः नम्मालवार जी के पास आएंगे। मधुर कवि ये भी एक विष्णु गण है, विष्णुदूत, कुमुद गणेश के अवतार हैं। विष्णुदूत का नाम है कुमुद गणेश और इनका जन्म तिरु नगरी के 2 मील पूर्व में तिरुकुल्लूर नाम के गांव में हुआ, ब्राह्मण कुल में, और बचपन से ही उनको अच्छे ब्राह्मण संस्कार दिए गए। कम उम्र में बहुत कुछ उन्होंने सीख लिया, 4 वेदों का पाठ किया, न्याय, व्याकरण, धर्मशास्त्र, ज्योतिष इत्यादि, इन सारे चीजों का पाठ करके बड़े विद्वान हो गए बड़े कम उम्र में। और अपना घर को छोड़कर फिर वो तीर्थ यात्रा के लिए उत्तर भारत में निकल पड़े, काशी गए, अवंती गए, द्वारका गए, अयोध्या, मथुरा और बद्रिकाश्रम इत्यादि। ऐसे भ्रमण करते करते कई साल बीत गए। आखिर उस समय तो कोई रेलगाड़ी और एरोप्लेन नहीं हुआ करते थे, लोग जब तीर्थ यात्रा में जाते थे तो पैदल ही जाना पड़ता था। तो एक बार जब वो बद्रिक आश्रम से अयोध्या की ओर जा रहे थे तो एक जगह रुके, और बीच रात में जब वो उठे शौच के लिए और जब बाहर खेत में गए तो अचानक उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे एक प्रकाश दिखाई पड़ रहा है दूर में आसमान में। तो उन्होंने देखा कि ये क्या है, ये जो प्रकाश है कोई साधारण प्रकाश नहीं लगता, इतना तेज कहां से आ रहा है, ये दक्षिण की ओर से आ रहा है। जब उन्होंने देखा तो अपने अपने गांव का स्मरण आया उनको, तो अपने गांव की ओर देखा तो यही प्रकाश वहां पर दिखाई पड़ रहा था उस दिशा में। उन्होंने सोचा क्या बात है, क्या कोई गांव में आग लग गया है, क्या कोई जंगल में ही कोई आग लग गया है, सारे पेड़ सब जल रहे हैं क्या। लेकिन देखा ये नहीं, ये ऐसे आग की अग्नि नहीं है, ये जंगल की अग्नि नहीं है, ये तो क्या है। तो इस तरह से वो सोचते सोचते फिर से सो पड़े, फिर से जाग गए, फिर भी वो उजाला वहीं पर वैसे के वैसे रहा, मानो कि ये कोई तारा है वहां पर। और कुछ समझ नहीं पाए, काफी भ्रमित हो गए, सोच में पड़ गए कि क्या है। एक दिन बीत गया, दूसरे रात को फिर से वही दृश्य, तीसरे रात को फिर से वही दृश्य। अब इस बार उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने सोचा अब तो हमें जानना ही होगा कि ये क्या है, ये प्रकाश कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये रहस्य क्या है। तो सीधे उस प्रकाश को देखते देखते वो चल पड़े उसकी दिशा में। दिन में ये प्रकाश नहीं दिखता था सूरज की रोशनी की वजह से, तो वो दिन में विश्राम करते थे और रात भर तेजी से जितना तेज हो सके उतना वो चलते थे। जिस दिशा में वो प्रकाश दिखता था उनको वहां पर चलते पड़े। और ऐसे कई दिन बीत गए, चलते 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 कई तीर्थ स्थानों से होकर वो आ गए श्रीरंगम, जहां के श्री रंगनाथ निवास करते हैं, जो बहुत पवित्र तीर्थ स्थान है खास करके श्री वैष्णवों के लिए। तो लेकिन वहां पर आके जब उन्होंने रंगनाथ जी का दर्शन किया तो उसके बाद भी उन्होंने देखा कि अभी तक ये तारा जो है ये प्रकाश है वैसे का वैसे। तो श्रीरंगम में दर्शन करने के बाद और दक्षिण की ओर निकल पड़े। चलते 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 अपने गांव के पास ही जब वो तिरुनगरी में आए तो अचानक ये ऐसे लगा उनको कि ये तारा अब ये बस गया है, अब ये प्रकाश दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि शायद यहां पर इस स्थान में ये कोई असाधारण घटना चल रही है। गांव के निवासियों से उन्होंने पूछताछ की कि यहाँ कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है क्या, यहाँ कोई आध्यात्मिक घटनाएं हो रही हैं क्या, यहाँ गांव में क्या क्या चल रहा है जो कि असाधारण है। तो गांव के व्यक्तियों ने बताया कि यहाँ पे तो आदिनाथ का मंदिर है ही, परंतु साथ साथ में यहाँ पर एक लड़का है मारन, 16 साल हुए, वैसे के वैसे बैठा हुआ है इस इमली के वृक्ष के नीचे, और आंखें खुली हुई नहीं है, मुंह बंद है, कुछ खाता नहीं, पीता नहीं, बोलता नहीं, देखता नहीं, सुनता नहीं, बस ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। तो फिर इन्होंने सोचा चलो जाके देखा जाए। मधुर कवि वहां पर चले गए और जब उस इमली वृक्ष के नीचे आए तो उन्होंने देखा कि ये तरुण यहां बैठा हुआ है, बहुत तेज है उसके शरीर में, आराम से पद्मासन में बैठकर उसका दाहिना हाथ जो है ऊपर है और वो अंगूठा और पहली उंगली जो है वो ज्ञान मुद्रा में ऐसे है, मानो कि वो उपदेश देना चाह रहे हैं। जब मधुर कवि ने उनको देखा, सोचा कि ये कोई अद्भुत तरुण लगते हैं, परंतु फिर भी वो परीक्षा लेना चाहते थे कि या ये बहरे हैं, गूंगे हैं, क्या हैं, चलो परीक्षा करके देखते हैं तो सही। तो उन्होंने एक पत्थर उठाया और जोर से पटका दिया उस पत्थर को जमीन के ऊपर, ताकि आवाज आए और आवाज से पता चले कि इस तरुण ने, इस युवक ने इस आवाज को सुना है कि नहीं। और जैसे ही पत्थर नीचे गिरा, आवाज आया, पहली बार तुरंत मारन की आंखें खुल गईं और बड़े करुणा और प्रेम के दृष्टि से मधुर कवि की ओर देखने लगे। तो मधुर कवि के मन में विचार आया कि ठीक है, कम से कम ये तो पता चल गया कि ये बहरे नहीं हैं और अंधे नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने पत्थर की आवाज सुन ली और सुनकर आंखें खोल दी, अब मुझको देख भी रहे हैं, इसका मतलब न तो बहरे हैं न अंधे हैं, लेकिन शायद ये लड़का गूंगा हो सकता है, तो क्यों ना परीक्षा करें। तो उन्होंने उनको एक प्रश्न पूछा तमिल भाषा में। प्रश्न का अर्थ ये था, जो वस्तु मृत है उसके गर्भ में, उसके अंदर अगर कोई सूक्ष्म वस्तु जन्म ले तो ये वस्तु क्या खाती है और वो कहां निवास करती है। अब ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछ रहे हैं, लेकिन तुरंत एक क्षण का भी अंतर नहीं था, मारन ने उत्तर दिया, ये चीज वो खाती है और वहां निवास करती है। ना तो प्रश्न हमें, हमारे लिए कोई मायने रखता, ना ही उत्तर, लेकिन इन दोनों के लिए ये बहुत गहरा प्रश्न उत्तर था। प्रश्न था कि आत्मा क्या है और ये जो जड़ पदार्थ वो क्या है और किस तरह से आत्मा यहां अटक के शरीर के अंदर पड़ी है, इसका राज क्या है। तो मारन ने झट करके उत्तर दिया, सोचा भी नहीं। और जब मधुर कवि ने देखा कि इन्होंने इतने सरलता से, उतने ही रहस्यमय ढंग से उत्तर दिया जैसे कि प्रश्न पूछा गया था, और इतना गहरा उत्तर है ये, जिसका मतलब है कि हालांकि ये शरीर जड़ पदार्थों का बना हुआ है, फिर भी इस शरीर के अंदर आत्मा है और शरीर जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे फल मिलते हैं कर्म के, और आत्मा को इन फलों को भुगतना पड़ता है, चाहे वो सुख हो या दुख हो, और ये कर्म बंधन का चक्र चलता रहेगा जब तक कि ये कर्म के फल क्षीण नहीं हो जाते तब तक। तो मधुर कवि न केवल इस उत्तर से आश्चर्यचकित हुए कि उन्होंने ऐसे एक आध्यात्मिक उत्तर दिया था जो जिसमें बहुत कुछ मतलब था, मधुर कवि न केवल इतने आश्चर्यचकित हुए कि मारन ने ऐसे जवाब दिया जो कि रहस्यमय भाषा में था, लेकिन सबसे ज्यादा मधुर कवि इसलिए आश्चर्यचकित हुए कि इतना गहरा और रहस्यमय उत्तर मारन ने बिना सोचे झट करके एक क्षण में भी नहीं उत्तर फटाक दे दिया। और फिर वो समझ गए कि ये व्यक्ति, ये तरुण जो है, ये कोई साधारण विद्वान नहीं है, बल्कि ये तो एक कोई महान संत है, असाधारण है। और तुरंत मधुर कवि ने साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया मारन के सामने और उनसे निवेदन किया कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, आज से आप मेरे गुरु हैं। हालांकि उस समय मारन केवल 16 वर्ष के थे और मधुर कवि की उम्र उनसे ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस 16 वर्ष युवक को अपना गुरु स्वीकार किया। स्मरण आता है किनका, किनका स्मरण आता है, 16 वर्ष की उम्र में कौन बहुत बड़े गुरु बने थे, सुखदेव गोस्वामी किनके गुरु बने थे, सारे पृथ्वी के पृथ्वीराज परीक्षित महाराज के। और वहां जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वो सब उठे थे जब सुखदेव जी वहां पर आए थे, तब केवल दो व्यक्ति उठे नहीं थे, वो कौन थे? व्यासदेव जी और नारद मुनि। क्योंकि व्यासदेव जी तो सुखदेव गोस्वामी के गुरु भी थे और पिता भी थे, और नारद मुनि सुखदेव गोस्वामी के परम गुरु थे, उनके गुरु के गुरु, तो मर्यादा के दृष्टि से उनको कोई उठने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अन्य जो भी ऋषि मुनि थे वो पहचान गए कि ये सुखदेव जी जो हैं, हालांकि एक तरुण हैं, युवक हैं केवल 16 वर्ष के, परंतु इनका जो साक्षात्कार है वो अतुलनीय है। इसलिए वो सब खड़े हो गए और परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न किए थे इन सारे ऋषि मुनियों को कि मृत्यु के द्वार पे जो खड़ा हुआ आदमी है उसके लिए कर्तव्य क्या है, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसके बारे में सुनना चाहिए बोलना चाहिए, किसकी उपासना करनी चाहिए, तो ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न मत प्रकट किए थे और विरोधाभास काफी हो रहा था। तो परीक्षित महाराज को सही एक कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, तो जब सुखदेव गोस्वामी वहां पर चले आए तो ऋषि मुनियों ने उनको नियुक्त किया परीक्षित महाराज को उपदेश देने के लिए, उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये तो केवल एक 16 साल का लड़का है, लेकिन वो पहचान पाए आध्यात्मिक साक्षात्कार जहां है उसको हमें जानना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, उम्र क्यों ना कुछ कुछ भी क्यों ना हो। तो इस तरह से मधुर कवि इन्होंने मारन को अपना गुरु स्वीकार किया। पहली बार मधुर कवि की वजह से मारन ने, जो कि आगे चल के नम्मालवार होने वाले थे, उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपना मुंह भी खोला, पहले शब्द बोले। वास्तव में मधुर कवि का जीवन का उद्देश्य यही था कि नम्मालवार को सारे विश्व को प्रदर्शित करना, नम्मालवार के महानता को सारे विश्व भर में फैलाना। और इसलिए मधुर कवि का मिलन भगवान की योजना से नम्मालवार के साथ हुआ। गुरु और शिष्य का मिलन, बल्कि किसी भी व्यक्ति के और भक्तों का मिलन भगवान की व्यवस्था से होता है, भगवान की योजना के अनुसार होता है, ये कोई साधारण बात नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति अचानक चलते चलते अपना रास्ता भूल कर भी मंदिर के द्वार में पहुंच जाए, यहाँ राधा गोकुलानंद मंदिर में, कोई दूसरे काम के लिए भी और पड़ोस में कहीं आए, सोचे मंदिर के पास में आए चलो यहाँ चले जाए, तो हमें जानना चाहिए कि ये भगवान की विशेष योजना है, ये बाय चांस यहां पर चले नहीं आए। संसार में कोई चीज बाय चांस नहीं होता है, सब कुछ भगवान के आज्ञा के अनुसार, भगवान के योजना के अनुसार होता है। जब भगवान देखते हैं कि यह व्यक्ति अब तैयार है, उसकी सुकृति की पूंजी पर्याप्त मात्रा में बढ़ गई है, तो फिर वो ऐसी कोई व्यवस्था करते हैं जिससे कि वो व्यक्ति को भक्तों का संग मिल जाता है। क्योंकि भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, हमारे भ्रमण का नियंत्रण करते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानां यंत्रारूढानि मायया, कि हे अर्जुन, मैं सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान हूं और सबके भ्रमण का नियंत्रण करता हूं। तो इस तरह से भगवान श्री हरि की योजना से मधुर कवि को नम्मालवार जैसे गुरु मिल गए। और आगे चल के क्या हुआ और कैसे चीजें, क्या क्या लिखे, कौन सी कविताएं लिखी, कौन से ग्रंथ लिखे नम्मालवार ने, तो ये हम अगले एकादशी को चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपके कोई प्रश्न है?
कौन है ये? भी भगवान विष्णु के दूत माने जाते, उनके गण है।
वैसे विश्वक्षर भगवान का भी एक नाम है,
उसको दोबारा एक बार कह सकेंगे क्या? और फिर क्या उत्तर दिया था, समझ में तो आ गया आत्मा का शरीर का, लेकिन एक बार वो दोबारा रिपीट हो जाता अच्छा है, सबके लिए लाभदायक।
मधुर कवि का प्रश्न ये था कि जो मृत चीज में एक सूक्ष्म वस्तु का जन्म होता है, तो वो सूक्ष्म वस्तु क्या खाता है और क्या निवास करता है? हमारे
तो क्या प्रश्न है,
लेकिन तुरंत नम्मालवार उसको समझ गए और तुरंत ही जवाब दे दिया। जवाब था क्या था कि वो ये खाता है और वहां निवास करता है। कहां निवास करता है? शरीर के भीतर निवास करता है। किसका भोग करता है? अपने कर्मों के फलों का भोग करता है। और जब तक ये क्षीण नहीं होते तब तक उसको यहां जन्म लेते रहना पड़ता है। इसका तात्पर्य मधुर कवि समझ गए तुरंत। वो भी बड़े बुद्धिमान थे, बड़े विद्वान थे, वो समझ गए और इतने स्तब्ध हो गए, कुछ बोल नहीं पाए कि ऐसा उत्तर कि बस अचंभे रह गए। वो निरुत्तर रह गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। वो परीक्षा करने की दृष्टि से आए थे, वहां बस देखते ही रह गए, सुनते ही रह गए कि ऐसा उत्तर और इतने जल्दी से, ऐसे आज तक हमने कहीं सुना नहीं है। और कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा। मतलब प्रश्न ये है, क्या शरीर के लिए व्रत वगैरह करना आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छे हैं? जबकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हरे कृष्ण मंत्र ये सबसे ज्यादा उत्तम है। लोग व्रत करते हैं
और अगले दिन खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं, तो व्रत के मुकाबले में मेरी मंत्र जो है वो ज्यादा पावरफुल है, तो क्या व्रत का हमको करने चाहिए या नहीं, कृपा करके समझाने का प्रयत्न। हरि बोल।
हरि बोल। अच्छा प्रश्न है। सबसे महत्वपूर्ण व्रत हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लेना है। व्रत क्या होता है? वास्तव में व्रत में क्या होता है? हम जब व्रत लेते हैं कि अब ये करेंगे वो करेंगे, मतलब तो तपस्या है ना, एक प्रकार की तपस्या है ना व्रत। तो भगवान का नाम लेना भी एक तपस्या है, कम से कम बद्ध जीव के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम लेने का जो आदत है वो किसी में नहीं है। संसार के प्रजल्प या संसार के व्यक्तियों का गुणगान करने में आदत इतनी हो गई है लोगों की कि भगवान का नाम मुख से निकलना बहुत कठिन हो जाता है। तो सारे धर्म का, सारे आध्यात्मिक जीवन का, बल्कि सारे जीवन का सार है भगवान का नाम लेना। और जितने भी सारे व्रत वगैरह हम करते हैं वो केवल इसके लिए करते हैं कि हमें भगवान के नाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाए। तो अगर हम सारे व्रतों का पालन करते हैं लेकिन इन व्रतों के पालन करने के फलस्वरूप हमें भगवान के नाम के प्रति आकर्षण नहीं जागृत होता मन में, तो हमारे व्रत जो है केवल व्यर्थ है, शून्य। श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम है, कोई फायदा नहीं। जैसे कि राजा कुलशेखर, जो भी और एक आलवार हैं, उनके बारे में भी आगे चल के चर्चा करेंगे। वो भी अपने मुकुंद माला स्तोत्र में कहते हैं कि ये सारे व्रत जो हैं ऐसे निष्फल हैं कि मानो एक राख में आप आहुति अर्पण कर रहे हैं, जले हुए राख में। कोई कुछ होगा उसमें नहीं। आहुति अर्पण करना तो अग्नि में करना चाहिए ना, क्यों राख में अर्पण करेंगे तो क्या मिलेगा उससे। ये और एक उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति जंगल में जाता है, कोई नहीं है वहां पर, और चिल्लाता है बचाओ बचाओ, कौन है उसे बचाने के लिए, कोई नहीं, निष्फल है उसका चिल्लाना। तो ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति ऐसे व्रत का पालन करता है उसके लिए व्रत ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसकी चर्बी कम करने का एक मार्ग है बस, ऐसा कुलशेखर महाराज कहते हैं। और कोई इसमें आध्यात्मिक फायदा नहीं है। इसलिए राजा इस शास्त्र में बताया हुआ है, आराधितो यदि हरि तपसाततः किम्, नाराधितो यदि हरि तपसाततः किम्, अंतर बहिर यदि हरि तपसाततः किम्, न अंतर बहिर यदि हरि तपसाततः किम्। इसका मतलब है कि आराधितो यदि हरि, अगर कोई श्री हरि की आराधना करता है बिल्कुल भक्ति भाव से, प्रेम से, तपसाततः किम्, तपस्या की क्या जरूरत है? क्योंकि तपस्या का फल तो मिल गया ना। हमारे तपस्या करने का फल है कि हमको भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम होना चाहिए। अब अगर किसी को प्रेम हो ही गया है पहले से तो अब तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन न आराधितो यदि हरि, अगर कोई भगवान की आराधना नहीं कर रहा है प्रेम से, तपस्या तक हम फिर भी उसकी तपस्या का क्या फल है? भक्तिहीन तपस्या व्यर्थ है, तो उसे नहीं करना ही अच्छा है वो तपस्या।
ठीक उसी तरह से अंतर बहिर यदि हरि, अगर कोई अंदर भी अपने अंतःकरण में और बाहर भी सब जगह कण कण में अगर वो भगवान को देख रहा है, तपसा ततः किम, तपस्या करने की क्या जरूरत है? तपस्या की परिपूर्णता को प्राप्त कर चुका है वो व्यक्ति। और अगर न अंतर बहिर यदि हरि, अगर अंदर भी नहीं देख पा रहा है भगवान को, बाहर भी नहीं देख पा रहा है, तो फिर भी ऐसे व्यक्ति के लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? कोई फायदा ही नहीं है उसके तपस्या के लिए। तो अगर हमने भक्ति या प्रेम प्राप्त कर लिया भगवान के प्रति, तो कोई तपस्या व्रत की आवश्यकता नहीं है। इसलिए माधवेंद्र पुरी भी बताते हैं कि हे सुबह शाम के स्नान आपको नमस्कार करता हूं, हे मेरे गायत्री मंत्र मेरी संध्या वंदन आपको भी नमस्कार करता हूं, हे देवी देवतागण आपको भी मेरा सादर प्रणाम हो, हे पितृगण आपको भी मेरा दंडवत हो, आप मेरे पे आप सब जो हैं मेरे पे नाराज न हो, क्योंकि मेरे लिए मेरे जीवन में आपके लिए कोई समय नहीं है, क्योंकि मैं इतना व्यस्त हूं, मेरे भगवान कंसारी जिन्होंने कंस का वध किया श्री कृष्ण के गुणगान में, कि मेरे को कोई समय काल का कोई पता नहीं चलता है, कब संध्या वंदन करना चाहिए, कब स्नान करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी स्नान नहीं करें और यही बोले कि चलो माधवेंद्र पुरी ने कहा था तो हम भी, अच्छा मौका मिल गया हम भी स्नान नहीं करेंगे, नहीं। जब माधवेंद्र पुरी के स्तर में पहुंच जाएंगे तो ऐसा बोल सकते हैं, परंतु माधवेंद्र पुरी स्नान हमेशा करते थे, केवल बोल रहे हैं ऐसे। कहने का मतलब है कि ये सारी जो विधियां हैं, व्रत हैं, इनको नमस्कार कर रहे हैं माधवेंद्र पुरी। तिरस्कार नहीं करेंगे आपका, ठीक है आप जहां हैं वो ठीक है आप, लेकिन हमारे लिए, हमारे जीवन में आपके लिए कोई समय नहीं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है कलयुग में, तो उसके लिए भगवान का नाम चाहिए, नाम से ही प्रेम हो सकता है। तो अगर हम भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं तो इन अन्य व्रतों की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई सोमवार है, किसी का मंगलवार है, किसी का बुधवार है ना, सातों दिन मिलेंगे आपको, लेकिन भक्त के लिए सातों दिन के लिए हरे कृष्ण महामंत्र चलता है। कोई शुभ और अशुभ घड़ी या दिन का कोई विचार नहीं है भक्त के लिए, लेकिन भक्ति में जो व्रत होते हैं उनका पालन अवश्य हमें करना चाहिए, हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए। जो बाहर दुनिया में लोग व्रत का पालन करते हैं, इस देवी को खुश करो, उस देवता को खुश करो, इस बाबा को, इस नाग को, उस भूत को, इसको उसको, तरह तरह वो देवी देवताओं को अलग अलग चीजों की उपासना करते हैं, उनके लिए व्रत करते हैं, लेकिन भक्त भी व्रत करते हैं, लेकिन केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए। जैसे कि जन्माष्टमी के दिवस पर हम निर्जल उपवास करते हैं, एकादशी के दिवस पर भी हम कोई अनाज नहीं खाते हैं, या हम सुबह जल्दी उठते हैं, हम भगवान के नाम नियमित रूप से जप करते हैं। कितने सारे ऐसे व्रत भी हैं भक्तों के लिए। चातुर्मास के समय कई भक्त तरह तरह के व्रत का पालन करते हैं, लेकिन ये भक्ति से संबंधित है। अगर कोई व्रत जो है भक्तिहीन हो जाए तो ऐसे व्रत का कोई मतलब नहीं भक्त के लिए। तो हमें भगवान का नाम जो है अपने जीवन का केंद्र बनाना चाहिए, और भक्ति के लिए जो अनुकूल तपस्या है, व्रत है, विधि विधान है, उनका पालन हमको करना चाहिए, उनको हमारे जीवन में स्वीकार करना चाहिए। ठीक है,
वरुद्राज का मंदिर कहां पे है?
कांचीपुरम में है, कांचीपुरम तमिलनाडु में है। कहीं जाएंगे, कभी जाएंगे एक दिन, जब दक्षिण भारत की यात्रा होगी तो इन सभी स्थानों में तो नहीं जा पाएंगे, थोड़े थोड़े स्थानों में जाकर दर्शन करने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि भगवान की मूर्ति जो आधे शयन और आधे खड़ी हुई वह जगह का नाम क्या है? विग्रह का नाम था अरवमूडन, ये तमिल भाषा में थोड़ा तकलीफ होता है, अरवमूडन, और शायद जगह का नाम है कुंभकोणम। ठीक है, कुंभकोणम किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारे मायापुर में जो अभी पंचतत्व के बड़े विग्रह बने हैं वो बने हैं कुंभकोणम में, क्योंकि वहां जो धातु के शिल्पकार होते हैं बहुत बड़ी संख्या में, जो भगवान के जो धातु के मूर्ति बनाने वाले लोगों के लिए प्रसिद्ध है कुंभकोणम।
ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय।